हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 17 श्लोक संख्या 46। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोप कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिनी, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अद्यैव मे विशतो मानसराजहंसा। प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्त्वा। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तत्थाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गीनया कल्पिता। श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममालम् प्रेम पुमर्थुमः श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो न पर वंशी विभूषित करा नवनीरधाभा पीतांभर दरुण बिंब फल धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रा। कृष्णात्परं किमपि तत्व अहं न जानि। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति देवैस्तवे वेदे सांगपत् कमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद् गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्टिके पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 17 श्लोक संख्या 46। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। इत्थं भूतानुभावोऽयं अभिमन्यो सुतो नृपः यस्य पालयतः क्षोणी यूयं सत्राय दीक्षिता। इत्थं भूतानुभावोऽयं अभिमन्यो सुतो नृपः यस्य पालयतः क्षोणीं यूयं सत्राय दीक्षिता। इत्थं भूतानुभावोऽयं अभिमन्यो सुतो नृपः यस्य पालयतः क्षोणी यूयं सत्राय दीक्षिता। इत्थं भूतानुभावो, इत्थं मन इस प्रकार हुआ, इस प्रकार यानी ये जो महाराजा परीक्षित ने किस तरह से पृथ्वी और बेल के संकट को खत्म किया, किस तरह से अपने शासन में जो अपराध थे उनको भी खत्म किया और कलयुग को रहने के लिए स्थान भी दिया, तो इसने पवित्र राजा जिन्होंने कलयुग जैसी आफत को भी अपने राष्ट्र में आने नहीं दिया, इस तरह से जब उन्होंने हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, हर एक समस्या का समाधान निकाला, तो अनुभव अयम इसका अभिमन्यु सुत, अभिमन्यु सुत मतलब परीक्षित महाराज जो कि अभिमन्यु के पुत्र हैं, ऐसे राजा, इतने पवित्र राजा हैं जिन्होंने कलयुग को अपने राज्य में आने की परमिशन नहीं दी, इसलिए ही यस्य पालयतः, इसलिए ही उनके शासन में क्षोणीय, क्षोणीय मतलब पृथ्वी पर यूयम आप सब सत्राय दीक्षिता, सत्राय मतलब ऐसा 1000 साल का यज्ञ करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हो, तो इसका कारण यही जो इतना पवित्र राजा है ना उसके राज्य की कारण हुए हो। अनुवाद देखिए, अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित इतने अनुभवी हैं कि उनके पटु शासन तथा संरक्षकत्व के बल पर ही तुम सब इस प्रकार का यज्ञ संपन्न कर रहे हो। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ब्राह्मण तथा सन्यासी समाज के आध्यात्मिक उन्नयन में अत्यंत दक्ष होते हैं। अब अगर संसार में ब्राह्मण और सन्यासी नहीं होंगे तो फिर कौन लोगों को दीक्षा देगा, कौन लोगों को शिक्षा देगा जिसके वो सारे जो जन सामान्य हैं वो आध्यात्मिक उन्नति कर सके। तो अगर आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो उसके लिए दो की जरूरत होती है, ब्राह्मण और सन्यासी। ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म के ज्ञान को जानते हैं और सन्यासी मतलब जिन्होंने विरक्ति को प्राप्त कर लिया है। तो वो दोनों क्या करते हैं, जीवों की आध्यात्मिक उन्नति में सहायता करते हैं, अत्यंत दक्ष होते हैं। जबकि क्षत्रिय या प्रशासक जो राजा होते हैं वो मानव समाज में शांति तथा संपन्नता लाने के में दक्ष होते हैं। अब राजा अगर पावर वाला होगा, उसके अंदर उसके पास बल होगा, उसके पास अनुभव होगा, तो क्या होगा, संसार में समाज में शांति और संपन्नता होगी। दोनों ही सुख के स्तंभ हैं, ब्राह्मण भी होने चाहिए और क्षत्रिय भी होने चाहिए, तभी शूद्र और वैश्य जो है वो आनंद से जी सकते हैं। अतएव वे जन कल्याण में पूर्ण सहयोग के निमित्त होते हैं ताकि सबका कल्याण हो सके। ब्राह्मण आध्यात्मिक उन्नति के लिए और राजा जो है वो समाज में शांति संपन्नता प्राप्त करने के लिए सारे लोगों को मतलब इस तरह से जन कल्याण प्राप्त कराते हैं। महाराज परीक्षित कली को उसके कार्यक्षेत्र से भगाने में अत्यंत अनुभवी थे, जिससे राज्य में आध्यात्मिक प्रभुत्ता के लिए स्थान मिल सका। अभी महाराजा परीक्षित ने कलयुग को स्थान दे दिया, कहां पर दे दिया, स्त्री सोना, जहां पर स्त्री गमन हो रहा हो, जहां पर हत्या हो रही हो पशुओं की, जहां पर जुआ खेला रहा हो, जहां पर मांसाहार हो रहा हो, जहां पर शराब पिया जा, तो ऐसी जगहों पर रहने के लिए जब परमिशन दे दी तो उससे और भी आध्यात्मिक प्रभुता में, क्योंकि फिर और भी लोगों को स्पेशल इन चीजों के लिए रोका गया कि यहां पर कलयुग है, तो और भी ज्यादा आध्यात्मिक उन्नति होने लगी, आध्यात्मिक प्रभुत्ता के लिए स्थान मिल पड़ा। तो यदि सामान्य लोग ग्रहणशील ना हो तो आध्यात्मिक प्रभुत्ता की आवश्यकता पर बल दे पाना कठिन होता है। अभी साधारण लोगों को ये मतलब ब्राह्मण और सन्यासी ऐसा ज्ञान देंगे ना कि भाई ये सारी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धर्म के स्तंभ क्या है, तपः शौचम दया सत्यम, और अगर हम लोग ये चार कार्य करते हैं, द्योतम पानम स्त्रिय सोना, अगर हम ये चार कार्य करते हैं तो धर्म के स्तंभ टूट जाते हैं। तो साधारण जनता अगर इस तरह से ग्रहण करती है इस बात को तो फिर तो आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी। लेकिन यहाँ श्री रूपा जी बोलते हैं यदि सामान्य लोग ग्रहणशील नहीं हो तो आध्यात्मिक प्रभुत्ता की आवश्यकता पर बल दे पाना कठिन है। अब जो प्रशासक होगा ना, वो प्रशासक जो है ना, वो बलपूर्वक अगर लोगों को इन चीजों से रोकने के लिए प्रयत्न करेगा, मतलब ऐसी चीजें अलाव ही नहीं करेगा अपने राज्य में जहां पर जुआ खेला जाता हो, जहां पर वेश्याओं का समागम होता है, या जहां पर मांसाहार होता है, अगर राजा ने इन चीजों पर पाबंदी लगा दी तो फिर तो जन साधारण जो है वो विवश होकर भी पुण्य मतलब आध्यात्मिक उन्नति करेगी, विवश हो जाएगी, क्योंकि राज्य में परमिशन नहीं है एक चीज की। तो आगे श्री रूपा जी कहते हैं तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य ये धर्म के मूल सिद्धांत हैं, उनसे आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने की भूमिका तैयार होती है, और महाराज परीक्षित ने इसके लिए अनुकूल परिस्थिति बना ली थी। अभी क्योंकि यहाँ पर श्री रूपा जी बता रहे हैं अगर धर्म के सिद्धांत पर कोई चलेगा, ये धर्म के मूल सिद्धांत हैं, तपः स्वच्छता दया तथा सत्य, क्योंकि राजा परीक्षित ने बोला था कि तपः स्वच्छता दया तथा सत्य जो है ये धर्म के सिद्धांत हैं, ये भागवतम ने कहा है। तो यदि इन सिद्धांतों पर कोई चलेगा तो तब ही वो आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण कर सकेगा, और महाराजा परीक्षित ने इसके लिए अनुकूल स्थिति बना दी थी। इस तरह नैमिषारण्य के ऋषि 1000 वर्ष तक यज्ञ करते रहे। दूसरे शब्दों में राज्य की सहायता के बिना दर्शन का कोई भी मत या धर्म निरंतर प्रगति नहीं कर सकता। अगर राज्य या जो गवर्नमेंट है वो साथ नहीं देगी तो फिर दर्शन, कोई भी फिलोसफी जो है वो निरंतर प्रगति नहीं कर सकेगी। इसके लिए ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के बीच में पूरा सहयोग होना चाहिए। तो जो क्षत्रिय हैं, जो राज्य संभाल रहे हैं, उनको हमेशा ब्राह्मणों के साथ मतलब उनसे परामर्श लेकर ही कोई कार्य करना चाहिए। इसीलिए पहले जब भी राजा जो भी फैसला करते थे, पहले उनके जो दरबार में जो बड़े होते थे, गुरु होते थे, जो ब्राह्मण होते थे, उनसे पहले परामर्श लेते थे, उसके बाद ही वो कोई अपना निर्णय देते थे या कोई फैसला सुनाते थे। क्योंकि ब्राह्मण और जो सन्यासी होते हैं वो शास्त्रों को जानते हैं, और जब सारे शास्त्रों को के अनुसार जब कोई रूल्स है ना गवर्नमेंट में स्थापित होते हैं तभी आध्यात्मिक उन्नति होती है। क्योंकि खाली आजकल क्या होता है, खाली जीव जो है वो किस तरह से भौतिक उन्नति करे, कैसे ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करे, ज्यादा से ज्यादा सिविलाइज्ड लाइफ चाहिए बस। आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं है आज कि किस तरह से लोगों को अपराध करने से बचाया जाए, नशा करने से बचाया जाए, झूठ बोलने से बचाया जाए, स्त्री अवैध स्त्री संग करने से बचाया जाए, मांसाहार से बचाया जाए, इसके लिए तो खुली छूट दे दी है, पूरा लाइसेंस दिया गया है। तो लोगों को भौतिक तो भोग जिस तरह जानवर भोगते ना, बस वैसी लाइफ बता दी है कि जिस तरह जानवर गलियों में खड़े होकर भोग करते हैं, आप लोगों को एक खूबसूरत महल बनाकर उसके अंदर वही काम करने हैं जो जानवर बाहर करता है। लेकिन ये तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है ना, मनुष्य जीवन तो उससे ऊपर उठना है। इसीलिए यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि दर्शन का कोई भी मत या धर्म निरंतर प्रगति नहीं कर सकता जब तक उसे राज्य का साथ नहीं होगा। इसके लिए ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के बीच में सहयोग होना चाहिए। महाराज अशोक तक यह भावना बनी रही। अभी महाराजा अशोक जो थे वहां तब तक क्या था, राज्य और क्षत्रियों में और ब्राह्मणों में वो बिल्कुल ये जो सहयोग था बना रहा। राजा अशोक ने भगवान बुद्ध को पर्याप्त समर्थन प्रदान किया जिससे उनका संप्रदाय सारे विश्व में फैल गया। तो महाराजा अशोक ने भगवान बुद्ध की बहुत सहायता की, क्योंकि पहले महाराजा अशोक तक क्या था, सारे जितने भी राजा आए वो ब्राह्मणों के साथ सहयोग करते थे और उनके मत के अनुसार ही अपने गवर्नमेंट्स में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने राज्य में चलाते थे। इस तरह से लोगों के अंदर जो है आध्यात्मिक उन्नति होती थी, संपन्नता होती थी, भौतिक संपन्नता भी होती थी और आध्यात्मिक उन्नति भी होती थी। और उसके बाद जो है आज वो हम देख रहे हैं कि हाल है समाज का। तो आगे श्री प्रभुपाद जी ने यहाँ पर तात्पर्य समाप्त किया है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत कलिक को दंड तथा पुरस्कार शीर्षक 70वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त हुआ। मोकं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयति किरं यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 17 जिसका शीर्षक है कली को दंड तथा पुरस्कार। तो हम स्टार्ट से देखेंगे कि इस अध्याय में हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले श्लोक में सूत गोस्वामी कहते हैं, तत्र गोमिथुनम राजा हन्यमानम मनाथवत दंडहस्तम च वृषलम दिदृश्य नृपलांशनम। तत्र गोमिथुनम राजा, सूत गोस्वामी ने कहा उस स्थान पर पहुंचकर महाराजा परीक्षित ने देखा कि एक नीच जाति का शूद्र ददृश्य नृपलांशनम, उसने क्या किया था, राजा के वेश बनाया था और एक गाय तथा एक बैल को लट्ठ से पीट रहा था। तत्र गोमिथुनम यानी गाय और बैल के जोड़े को हन्यमानम अनाथवत वो पीट रहा था मानो उनका कोई भी स्वामी नहीं। वृषम मृणाल धवलम मेहंत मिव्यतम वेपमानम पदेखेन सीदंतम शूद्र ताड़ितम। वृषम मृणाल धवलम, जो बेल था वो श्वेत कमल के समान सफेद था। मेहंतम एव भिव्यवत, वो इस शूद्र से अत्यधिक भयभीत था और जो कि उसे मार रहा था। वेपमानम पदेखेन, एक ही पैर, वह इतना डरा हुआ था कि एक ही पैर पर खड़ा कांप रहा था। सीदंतम, कांप रहा था और शूद्र तारितम, और पेशाब कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि शूद्र उसे बहुत ज्यादा यातना पहुंचा रहा है। आगे अब सूत गोस्वामी गौ मैया के विषय में बता रहे हैं कि गाम च धर्म दुगाम दीनाम वृषम शूद्र पदाहताम विविच्छामा शुवदनाम क्षामा यव समिच्छिता इच्छितिम। गाम च धर्म दुगाम दीनम, जो गाय है यद्यपि गाय उपयोगी है क्योंकि उसे धर्म उससे धर्म प्राप्त किया यानी दोहा जा सकता है। और दीनाम दृश्यम, वो फिर भी दीन दिख रही थी किंतु अब वो बहुत दीन थी। दृश्यम शूद्र पाहातम, बछड़े से रहित थी, उसके पांव पर शूद्र जो है वो प्रहार कर रहा था। विविधसम अश्रु वदनाम, उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। और क्षामाम, वह अत्यंत ही दुखी होकर कमजोर हो गई थी। और यवसमिच्छति, वह खेत की थोड़ी सी घास के लिए भी लालायित थी। तो महाराज परीक्षित ने जब यह दृश्य देखा कि एक दुष्ट, एक शूद्र जो है वो महाराज का वस्त्र धारण करके गऊ और बैल के ऊपर इतना अत्याचार कर रहा है, तो उनसे रहा नहीं गया। और आगे सूत गोस्वामी कहते हैं, प्रप्रच्छ रथमारूढ़ कार्तस्वर परिच्छदम मेघ गंभीरया वाचा समारोपित काम कार्मुक पप्रच्छ रथम आरूढ़। वो जो रथ के ऊपर बैठे हुए थे, कार्तस्वर परिच्छदम, धनुष और बाण से सज्जित तथा स्वर्ण जटित रथ पर आसीन महाराज परीक्षित ने उस शूद्र से मेघ गंभीर आवाचा, बहुत मेघ के समान गंभीर गर्जना करने वाली आवाज में गंभीर स्वर से समारोपित कार्मुक, उन्होंने धनुष बाण उठा के उससे बहुत ही मेघ की तरह गरजदार आवाज में उनसे पूछा। राजा ने उस शूद्र को बोला, कस्तम चरणे लोके भलादस्य भलान बली नरदेवो सिवेशेण नटवत कर्मणा द्विज। अरे तुम हो कौन, कस्तम चरणे लोके, तुम कौन हो, तुम बलि प्रतीत हो रहे हो, बलादस्य बलान बली, दिख रहे तो तुम बहुत ज्यादा बलि हो, फिर भी तुम उन असहायों पर को मारने का साहस कर रहे हो। नरदेवोसि वेशेण, देखने में तो तुम राजा लग रहे हो, जो ये जो असहाय हैं जो मेरी शरण में हैं, वेश से तो तुम देवतुल्य पुरुष राजा बने हुए हो, किंतु अपने कार्यों से नटवत कर्मणा द्विज, तो तुम अपने कार्यों से द्विज यानी क्षत्रियों के नियमों का तिरस्कार कर रहे हो, बताओ मुझे कौन हो तुम। फिर महाराज परीक्षित ने बहुत ही क्रोध में उसको बोला, यस्तुम कृष्ण गति दूरम सह गांडी वधन्वना शोच्योस्य शोचान रहसी प्रहरन वदमरहसी। यस्तुम कृष्ण गति दूरम, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कृष्ण अब नहीं रहे, सह गांडी व धनवता और गांडी धनुषधारी अर्जुन नहीं रहे, इसलिए अरे मूर्ख, क्या तुम इस निर्दोष गाय को मारने का दुस्साहस इसलिए कर रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण गांडी धनुषधारी अर्जुन अब नहीं रहे। शोचो असोच्यान रहसी, चूंकि तुम इस निर्दोष को एकांत स्थान में मार रहे हो, तो प्रहरण वदम अरहसी, अतएव तुम खुद बहुत बड़े अपराधी हो और अब तुम वध किए जाने योग्य हो। उसके बाद महाराजा परीक्षित ने भील की ओर देखा और कहने लगे, त्वं वा मृणाल धवल पादैर्न्यून पदाचरन वृषरूपेण किं कश्चित् देवो न परिखेदयन। त्वं वा मृणाल धवलम, मृणाल धवल मतलब सफेद कमल के जैसे, पादय न्यून पदाचरण, आपके तीन पैर तो खत्म हो चुके हैं और तुम एक पैर के ऊपर चल रहे हो। वृष रूपेण किम कश्चित, भेल का तो स्वरूप है, मुझे बताओ तुम हो कौन। देवो न परिखेदयन, क्या तुम कोई देवता हो और हमें कोई कष्ट पहुंचाने के लिए, क्लेश पहुंचाने के लिए आए हो। अनुवाद, तब उन्होंने महाराज परीक्षित ने बेल से पूछा, अरे तुम कौन हो, तुम श्वेत कमल के जैसे श्वेत बेल हो या कोई देवता हो, तुम अपने तीन पैर खो चुके हो और केवल एक पैर पर चल रहे हो, क्या तुम बेल के रूप में कोई देवता हो जो हमें इस तरह क्लेश पहुंचा रहे हो। उसके बाद महाराज परीक्षित गौ को कहने लगे, न जातु को रविन्द्राणाम दोर्दंड परिरंभिते भूतलेनो पतन्त्यस्मिन् विनाति प्राणिनां शुचः। यानी न जातु कौरवेन्द्रणाम, यानी कौरवों के खानदान में आज तक दोर्दंड परिरंभित है। अभी उनके उनके बाजू में इतना बल है कि वो सारे राज्य को सुरक्षित कर सकते हैं। भूतलेनो पत्यंतस्मिन, इस पूरी सृष्टि पर, इस पूरी पृथ्वी पर विना ते परिणाम प्राणी नाम शुचि, सारे लोगों में आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जिन्होंने पृथ्वी पर इस तरह से विवश होकर आंसू गिराए हुए हों। अनुवाद देखिए, कुरुवंश के राजाओं के बाहुबल से सुरक्षित राज्य में आज पहली बार तुम्हें आंखों में आंसू भरे शोक करते हुए देख रहा हूँ। आज तक किसी ने पृथ्वी पर राजा की उपेक्षा के कारण आंसू नहीं गिराए। उसके बाद महाराजा परीक्षित ने गऊ और बैल को सांत्वना देते हुए कहा, मासोरभे यात्र शुचो वेतु ते वृषलाद भयम मारोधिरम भद्रम ते कलानाम महिषास्तर। मा सौरभे यात्र शुचो, सौरभे हे सुरभि पुत्र, आप इतना ज्यादा शोक मत करो। वेतु ते वृषलाद भयम, अब तो आपको इस तरह से इस शूद्र से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मा रोधिरम भद्रम ते, मा मतलब मत, रोधितम आप मत रो, अम्भ अम्भ यानी हे गौ माता, आप भी अब मत रो। भद्रम ते, आपका अवश्य कल्याण होगा। खलाना मई शास्त्रम, ये जो खल है, ये जो ईशालु, ये जो पवित्र भावना रखने वाले व्यक्ति हैं, उनसे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये मेरा शास्त्र है, जब तक मेरा राज्य है, मैं शासक हूँ, तब तक तो तुम्हें ये अपराधी कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, मैं आपकी सुरक्षा करूंगा। अनुवाद देखिए, हे सुरभि पुत्र, अब तुम और शोक ना करो, तुम्हें इस निम्न जाति के शूद्र से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथा हे गौ माता, अब तक मैं शासक या खलों की दमनकर्ता के रूप में हूँ, तब तक तुम्हें रोने या विलाप करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा सभी तरह से कल्याण हो। और आगे कहने लगे, यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वा त्रस्यन्ते साध्य साधुभि तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गति एष राज्ञं परो धर्मो यार्तानामार्ति निग्रह अत एनं वदिष्यामि भूतद्रोह असत्तमम्। यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वा, यानी जिस राजा के राज्य में सारी प्रजा त्रस्यन्ते साध्य साधु भी, जो साधु लोग हैं वो सब त्रस हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तस्य मत्तस्य नश्यन्ति, उसका तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। मत्तस्य यानी वो मोहग्रस्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट हो जाता है? कीर्ति आयु भगो गति, उसकी कीर्ति, उसका यश, उसकी आयु भी नष्ट हो जाती है। भग यानी उसकी संपत्ति, और गति भी नष्ट हो जाती है, यानी उसका पुनर्जन्म भी अपवित्र होता है, क्योंकि वो राजा का कर्तव्य है कि अपने प्रजा के समस्त लोगों को संरक्षण प्रदान करे। लेकिन जिस राजा के राज्य में सब दुखी होते हैं, उनकी कीर्ति आयु भगो गति सब नष्ट हो जाता है। एष राज्यम परो धर्मो, ये राजा का परम धर्म है क्या? ह्यार्तानाम आर्ति निग्रहम, कि वो कष्ट भोगने वालों के दुखों को दूर करे। अत एनम वदिष्यामि, इसलिए मैं उसको मारूंगा। भूत द्रोहम असत्तमम, जो बहुत ज्यादा अत्यंत दुष्ट है, जो जीवों को भूत द्रोहम यानी सारे जीवों को जो बहुत ज्यादा हिंसा करने वाला है, कष्ट देने वाला है, इस व्यक्ति को मैं छोड़ूंगा नहीं। वदिष्यामि, उसको अवश्य मारूंगा। अनुवाद, हे साध्वी, यदि राजा के राज्य में भी सभी प्रकार के जीव त्रस्त रहे, तो राजा की ख्याति, उसकी आयु तथा उसका उत्तम पुनर्जन्म परलोक भी नष्ट हो जाता है। यह राजा का प्रधान कर्तव्य है कि जो पीड़ित हों, सर्वप्रथम उनके कष्टों का शमन किया जाए। अतएव मैं इस अत्यंत ही दुष्ट व्यक्ति को अवश्य मारूंगा, क्योंकि यह अन्य जीवों का हिंसक है। महाराज परीक्षित से उस बेल का कष्ट देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वो बार बार बेल से पूछ रहे थे, कोविश्च तव पादास्त्रीन सुरभेय चतुष्पद मा भूवंस्त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिना को वृषत तव पादांश्रीन। मुझे बताओ आपके तीन पांव को वृषत किसने काटे, तव पादांश्रीन तीन पांव किसने काटे। सौरभे ये चतुष्पद हे सौरभि पुत्र, आपके तो चार पांव होते हैं तो तीन पांव किसने काटे। माँ भूवंश तवादृशा राष्ट्रे, मेरे इस पूरे राज्य में आज तक इतना ज्यादा दुखी कोई नहीं हुआ। राज्ञाम कृष्णानुवर्तिनम, क्योंकि ये राज्य तो कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन किया जाता है इस राज्य में, और उसमें आप जितना दुखी तो और कोई नहीं है। उन्होंने यानी महाराजा परीक्षित ने बेल को बारंबार संबोधित करते हुए इस तरह से पूछा, हे सुरभि पुत्र तुम्हारे तीन पांव को किसने काट लिया है। उन राजाओं के राज्य में जो भगवान श्री कृष्ण के नियमों के आज्ञाकारी हैं, तुम्हारे समान दुखी और कोई नहीं। फिर बोले, आख्या ही विषभद्रम वह साधु नाम कृतागसाम आत्मवैरूप्य करतारम पार्थानाम कीर्ति दूषण। आख्या ही, मुझे बताओ वृष हे बेल भद्रम वह, तुम्हारा कल्याण हो साधु नाम कृतागसाम, क्योंकि आप तो अपराधहीन हो, आप तो साधु हो, तो आत्मरूप्य करतारम आपका ये स्वरूप किसने बिगाड़ा, आपके साथ इतना बड़ा अत्याचार किसने किया है। पार्थानाम कीर्ति दूषणम, वो तो प्रथा के पुत्र अर्जुन के हम जो अनुयायी हैं उनकी कीर्ति को कलंकित करने वाला है, मुझे उसका नाम बताओ। अनुवाद, हे बेल तुम निरपराध हो और अत्यंत ही ईमानदार हो, अतएव मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ। कृपया मुझे अंग भंग करने वाले दुष्ट के बारे में बताओ जो प्रथा के पुत्रों के यश को कलंकित कर रहा है। अब महाराजा परीक्षित ललकार कर बोल रहे हैं कि जनेनागस्य गम्युञ्जन सर्वतोस्य च मद्भयम् साधूनां भद्रमेव स्याद् असाधु दमने कृते। जनेनागस्य गम, जो लोग साधारण लोग हैं, जो निरपराध हैं, अघम यानी जो कष्ट देते हैं लोगों को, जो साधारण लोगों को कष्ट देते हैं, सर्वतो यस्य च मद्भयम्, वो चाहे जहां पर भी दुनिया के किसी भी कोने में हो जो निरपराधियों को कष्ट दे रहे हैं, च मद्भयम्, उनको मुझसे डरना चाहिए, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। और साधूनां भद्रमेव स्यात्, जब साधुओं का कल्याण, साधुओं का खुद ही, दूसरे जो साधु लोग हैं निरपराध हैं, उनका तभी कल्याण होगा जब असाधु दमने कृते, जब दुष्टों का मैं दमन करूंगा ना, तभी खुद ब खुद साधुओं का कल्याण हो जाएगा। इसलिए चाहे वो कहीं पर भी छुपे हुए हों, उनको मुझसे डरना चाहिए। इसलिए मुझे बताओ किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। अनुवाद, देखिए, जो कोई भी निरपराध जीवों को कष्ट पहुंचाता है उसे चाहिए कि विश्व में जहां कहीं भी हो मुझसे डरे। दुष्टों का दमन करने से निरपराध व्यक्तियों को स्वतः लाभ पहुंचेगा। अनागस्विह भूतेषु य आगस्कृन् निरंकुश आहर्तास्मि भुजं साक्षात् अमर्तस्यापि सांगदम। अनागस्विह भूतेषु, जो साधारण जीवों को, निरपराध जीवों को जो कष्ट पहुंचाएगा, या आगस्कृन् निरंकुश, जो उच्छृंखल होंगे, उदंड होंगे, दुष्ट होंगे, जो निरपराधियों को कष्ट पहुंचाएंगे, तो आहर्तास्मि भुजम साक्षात, मैं उसको अवश्य दंड दूंगा, चाहे वो अपने बाजुओं पर बाजूबंद लगा के, अमर्तस्यापि, चाहे भले वो अमर्तस यानी के जो देवता है वो ही अंगदम, वो ही मुकुट पहन के या फिर देवताओं का श्रृंगार करके, यदि कोई देवता भी आकर निरपराधियों को मेरे राज्य में दंड पहुंचाएगा तो उनको भी मैं नहीं छोड़ूंगा, उनको भी अवश्य दंडित करूंगा। अनुवाद, जो उदंड व्यक्ति निरपराधियों को सताकर अपराध करेगा वह मेरे द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा, चाहे वह बाजूबंद तथा अन्य अलंकारों से युक्त स्वर्ग का निवासी ही क्यों न हो। राज्ञो हि परमो धर्म स्वधर्म स्थानुपालनम शासतो न्यान यथा शास्त्रम अनपाद युत्पथानिह। राज्यो ही परमो धर्म, राजा का ये परम धर्म है स्वधर्म स्थानुपालनम, के अपने धर्म का पालन करे। शासतो न्यान यथा शास्त्रम, जो शास्त्र में लिखा हुआ है उसी के अनुसार सब शासन को चलाना चाहिए और अनापत्युत्पथा नहीं, मतलब जो अगर आपत्ति नहीं है, कोई सामान्य समय है, तब तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा गलत कार्य राज्य में हो रहा है तो राजा का परम धर्म है कि वो अपने राज्य के इन गलत होने वाले कार्यों को सही करे और अपने कर्तव्यों को निभाए। अनुवाद, शासक का परम धर्म है कि कानून पालन करने वाले व्यक्तियों को सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करे और जो जो सामान्य दिनों में जब आपत्कालीन नहीं रहता है तो शास्त्रों के आदेशों से विपत्त हो जाते हैं, उन्हें अवश्य दंड दे। इतना सुनने के बाद धर्म जो बेल के स्वरूप में था उसने उत्तर देना प्रारंभ किया। धर्म रूपी बेल ने महाराज परीक्षित को के सराहना करते हुए कहा, धर्म उवाच एतत्वः पांडवेयानां युक्तमातार्भयं वचः येषां गुण गुणै कृष्णो दोत्यादौ भगवान् कृतः। एतत्वः पांडवेयानां, जो आप कह रहे हो वो सब पांडव वंशी के लिए युक्त माता भयं वचः, एकदम सही पांडवों के जो वंशज हैं उनके लिए सर्वथा उपयुक्त है। वो तो ऐसे वचन अवश्य कहेंगे क्योंकि उनको ऐसे ही वचन शोभा देते हैं। आपका वंश जो है वो सदैव से परम भक्त रहा है। येषां गुण गुणै कृष्णो, उनके गुणों को देखकर, उनकी इन सारे सही धार्मिक क्वालिटीज को देखकर तो कृष्ण दावता दयो, कृष्ण साक्षात भगवान भी उनका कभी दूत बन जाते थे तो कभी उनका सारथी बन जाते। दूत त्यादव भगवान कृता, भगवान होते हुए भी आपके जो पांडव हैं उन पांडव वंशियों के भगवान सहायता करने के लिए कुछ भी उनके लिए करने के लिए तैयार थे और आप उन्हीं के वंशज हो तो आपके मुख से ये शब्द बहुत उपयुक्त है। अनुवाद, धर्म ने कहा अभी आपने जो शब्द कहे हैं वे पांडव वंशी व्यक्तियों के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। पांडवों के भक्ति पूर्ण गुणों से मोहित होकर ही भगवान श्री कृष्ण ने दूत का कर्तव्य निभाया, परंतु बेल राजा के प्रश्न का उत्तर सीधा नहीं दे पाया और कहने लगा, न वयम क्लेश भीजानी यत्तः सुपुरुषर्षभ पुरुषम तम विजानीमो वाक्य भेद विमोहिता। न वयम क्लेश बीजानी, मेरे जो क्लेश है, मेरा जो दुख है उसका बीज मुझे नहीं पता, मूल कारण जो रूट काज है वो मुझे नहीं पता। यत्तः सुपुरुषर्षभ, कि आखिर इसकी वजह क्या है। पुरुषम तम विजानीमो, आप परम हो, आप ज्ञानी हो, आप सिद्धांत को समझते हो, आप खुद ही जानते हो कि वाक्य वेदम विमोहिता, हम तो वाक्य भेद से कितने ज्यादा विमोहित हो गए हैं। अनुवाद, हे पुरुषश्रेष्ठ, यह निश्चित कर पाना अत्यंत ही कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया है, क्योंकि हम सैद्धांतिक दार्शनिकों के विभिन्न मतों से हम मोहित मोहग्रस्त हो गए हैं। कौन से वाक्य वेद हैं, वो आगे कहते हैं कि चित विकल्प वसना आहुरात्मा मनात्मना देवमन्ये परे कर्म स्वभावम अपरे प्रभु। केचित विकल्पना वसना, कुछ लोग तो सभी प्रकार से द्वैत से इनकार करने वाले होते हैं, वो क्या कहते हैं, आहुर आत्मना आत्मना, कि हर कोई अपने कष्ट का जिम्मेदार खुद ही है, क्योंकि वो इतना आलसी है, वो कर्म करेगा तो आनंदित होगा ना, इसीलिए लोग जो दुखी हैं वो अपनी वजह से दुखी हैं। और देव मन्ये परे, दूसरे क्या बोलते हैं कि देव, यानी जो दूसरे बोलते हैं, वो जो देवी शक्तियां होती है ना, वो आपके कष्ट का कारण होते हैं। परे कर्म, और कुछ बोलते हैं आपके कर्मों के अनुसार आपको कष्ट मिला है। स्वभाव अपरे प्रभु, कुछ लोग बोलते हैं प्रकृति जो है वो ही आपके कष्ट का कारण है। अनुवाद देखिए, सभी प्रकार के द्वैत से इनकार करने वाले कतिपय दार्शनिक यह घोषित करते हैं कि मनुष्य स्वयं ही अपने सुख तथा दुख के लिए उत्तरदायित्व होता है। अन्य लोग कहते हैं कि दैवी शक्तियां उसके लिए जिम्मेदार होती हैं, जबकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि इसके लिए कर्म जिम्मेदार है, और जो निपट भौतिकतावादी हैं वे मानते हैं कि प्रकृति ही इसका परम कारण है। इसलिए बेल ने महाराज परीक्षित से कहा, अप्रतर्क्यादि निर्देशात् इति केष्वपि निश्चयः अत्रानुरूपं राजर्षि विमृश्य स्वमनीषया। अप्रतर्क्यादि निर्देशात् के सब जो बड़े बड़े चिंतक हैं वो कहते हैं उनके अनुसार निर्देशात् उनके अनुसार क्या है कि कोई भी तर्क के द्वारा या भौतिक चिंतन के द्वारा मानसिक चिंतन के द्वारा ये नहीं निश्चित कर सकता है कि किसी के कष्ट का कारण क्या है। इसलिए अत्रानुरूपम राजर्षि, आप तो राजर्षि हो, इसलिए उनमें से जो सही है विमृश्य स्वमनीषया, आप तो स्वयं बुद्धिमान हो, आप खुद ही मेरे कष्ट का कारण ढूंढ निकालो कि आखिर मेरे कष्ट का कारण क्या है। अनुवाद, कुछ ऐसे भी चिंतक हैं जिनका विश्वास है कि ना तो तर्क द्वारा कष्ट का कारण निश्चित किया जा सकता है और ना ही उसे कल्पना से जाना जा सकता है, ना ही शब्दों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। हे राजर्षि, आप अपनी बुद्धि से यह सब सोचकर अपने आप ही निर्णय करें। उसके बाद सूत गोस्वामी बहुत ही सुंदर तरीके से बताते हैं कि एवं धर्मे प्रवदति सम्राट द्विज सत्तम समाहितेना मनसा विखेद पर्यचष्टतम। एवं धर्म धर्मे प्रवदति, जब धर्म ने इस तरह से बताया स सम्राट द्विज सत्तमा, इसलिए उस टाइम पर ही द्विज सत्तमा यानी सारे ऋषियों को सूत गोस्वामी कहते हैं, उस टाइम पर जब सम्राट युधिष्ठिर सॉरी परीक्षित ने समाहिते न मनसा ध्यान से बहुत ध्यान से धर्म की बात सुनी और विखेद परिचष्टतम और बगैर किसी खेद के बगैर किसी त्रुटि के उस तरह से कहा। अनुवाद, सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, धर्म को इस तरह से बोलते सुनकर सम्राट परीक्षित अत्यंत ही संतुष्ट हुए और बिना किसी त्रुटि या खेद के इस प्रकार से उत्तर दिए। और अत्यंत ही सुंदर उत्तर दिया है महाराज परीक्षित ने, श्लोक नंबर 22। राज उवाच धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूपदृक् यदा धर्म कृतस्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत्। धर्म ब्रवीषि धर्मज्ञ, तुम तो धर्मज्ञ हो, धर्म की बात कर रहे हो। धर्मों से वृष रूपद्रिक, तुम तो साक्षात धर्म हो जो बेल का स्वरूप धारण करके मेरे सामने खड़े हो। यदा धर्म कृतस्थानम, और जानते हो कि जो अधर्म करता है वो उसको जो स्थान प्राप्त होता है सूचक स्यापि तद भवेत, जो सूचक होता है जो पहचान कराने वाला होता है अधर्मी की उसे भी वही स्थान प्राप्त होता है। फिर सूत गोस्वामी बताते हैं, अथवा देव मायाया नूनं गतिरगोचरा चेतसो वचसश्चापि भूतानामिति निश्चया। अथवा देव मायाया, यानी ये जो देव माया या भगवान की शक्तियां हैं, नूनं गतिरगोचरा, ये बहुत ही अगोचर हैं, अचिंत्य हैं, उनको समझा नहीं जा सकता। चेतसो वचतस वचसश्चापि, चेतसो यानी मन से या वाणी से बताया नहीं जा सकता। भूतानाम इति निश्चया, कोई भी निश्चय नहीं कर सकता कि कष्ट का कारण कौन है, यही निष्कर्ष निकलता है। अनुवाद, इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि भगवान की शक्तियां अचिंत हैं, कोई ना तो मानसिक चिंतन द्वारा ना ही शब्द चात्री द्वारा उनका अनुमान लगा सकता है। ये महाराज परीक्षित ने बताया कि कोई भी शब्द चातुरी द्वारा उनका अनुमान नहीं लगा सकता है, भगवान की अचिंत्य शक्तियां हैं। तुम तो साक्षात धर्म हो और मैं जानता हूँ, आगे बोलते हैं, तपः शौचम दया सत्यम इति पादा कृते कृता। जब सत्युग थे तो सत्युग के अंदर आपके चार पैर थे, तपः शौचम दया सत्यम, तपस्या पवित्रता दया और सत्यता, इन चार पैरों पर आप खड़े थे। और अधर्मांशे त्रयो भगना, अधर्म के अंश, ये जो कलयुग खड़ा है वो अधर्म का अंश है, और उसने क्या किया, त्रयो भगना, तीन को तोड़ दिया। कैसे तोड़ा, स्मय संग मदयस्तवा, स्मय यानी अहंकार के द्वारा, कि हर कोई ये सोच रहा है कि मैं ही भोक्ता बनूं, वो जीवों पर हिंसा करते हैं, संगम स्त्री के साथ प्रसंग अवैध संग करते हैं और उसके साथ मदय यानी नशा करते हैं। इसलिए तुम्हारे तीन पीर जो हैं वो मतलब स्मय संगम और नशे के कारण तीन पीर टूट गए हैं, इसलिए तुम दुखी हो। अनुवाद, सत्युग में तुम्हारे चार पीर तपस्या पवित्रता तथा दया सच्चाई के चार नियमों के द्वारा स्थापित थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार काम वासना तथा नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण तुम्हारे तीन पैर टूट गए हैं। अब तुम्हारे तीन पैर तो कट गए हैं, लेकिन आगे कहते हैं इदानीं धर्म पादास्ते सत्यम निर्वर्तयेद्यत तं विग्रक्षत्य धर्मोऽयम् अनृत्ते नैदितः कली इदानीं धर्म पादास्ते। इस तरह से अब आपके सिर्फ एक ही पैर हैं, सत्यम निर्वर्तयेद्यत, जो सत्य है वो अभी तक जीवित है, सत्य नाम का एक पैर जो है वो अभी तक जीवित है, लेकिन तम विग्रक्षत्य धर्मोयम, लेकिन फिर भी अधर्म जो है उसको भी नष्ट करना चाहता है। अनित्ते नैदितम कली, ये जो बढ़ता हुआ एदित यानी कलयुग जैसे जैसे बढ़ रहा है, आपका ये वाला पैर भी कटता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। अनुवाद, अब तुम केवल एक पांव पर खड़े हो जो तुम्हारा सत्य है, और तुम अब किसी न किसी तरह से जी रहे हो, किंतु छल से फलने फूलने वाला यह कलह रूप कली उस पांव को भी नष्ट कर रहा है। और पृथ्वी के दुख का कारण बताते हुए महाराज परीक्षित कहते हैं, एयम च भूमिर् भगवता न्यासितो रुबरा सती श्रीमद्भिस्तत्पदन्यास सर्वतः कृत कौतुका इदम च भूमिर् भगवता। ये जो भूमि है पृथ्वी है वो भगवान द्वारा न्यासितो रुबरासति, न्यासितो यानी स्वयं तथा अन्यों के द्वारा भगवान उनकी सुरक्षा करते थे, उनका कल्याण, उनके ऊपर जो अधर्म था उनका नाश कर रहे थे, क्योंकि जब स्वयं भगवान यहाँ पर थे फिर तो वो धर्म की रक्षा करते थे। इसलिए जब पृथ्वी पर धर्म होता था तो बहुत ज्यादा आनंदित थी। श्रीमद भस्ति तत्पदन्यास, श्रीमद यानी कि वो सर्व कल्याणकारी, और पदन्यास यानी पद चिन्हों के द्वारा, क्योंकि भगवान के पद चिन्ह वहां पर थे। सर्वतः कृत कौतुका, हर जगह पर सौभाग्य ही सौभाग्य था पृथ्वी का। अनुवाद, निश्चय ही पृथ्वी का बोझ भगवान द्वारा तथा अन्यों द्वारा जैसे महाभारत का युद्ध कराया तो इतने सारे अपराधियों का नाश हुआ, इसके अलावा जरासिम को भीम के द्वारा, जब भगवान यहाँ पर थे तो अधर्मियों का खुद भी नाश कर रहे थे और दूसरों के द्वारा भी कर रहे थे, इसलिए अन्यों द्वारा भी कम किया गया था। जब वे अवतार के रूप में विद्यमान थे तो उनके शुभ पद चिन्हों द्वारा समस्त कल्याण समस्त संपन्न होता था। और आगे कहते हैं, इसे महाराज परीक्षित बोल रहे हैं कि आज ये पृथ्वी इसलिए रो रही है क्योंकि वो भविष्य की चिंता कर रही है, क्योंकि अब भगवान इस पृथ्वी पर नहीं रहे तो वो क्या सोच रही है। शोचत या शुकुल साध्वी, शोचत बहुत ज्यादा शोक कर रही है ये साध्वी, अश्रुकुला यानी आंखों में से आंसू भर के, दुर्भाग्य वो चेता सती, अपने दुर्भाग्य के बारे में सोच रही है, अत्यंत अभागा अपने आप को समझ रही है। अब्रह्मण्या नृपव्याज, अब्रह्मण्या यानी जो अब जो राजा आएंगे वो ब्राह्मण संस्कृति से विहीन होंगे। शूद्रा भोक्षन्ति मामेका, और जो शूद्र होंगे जो राजा बनने के लायक भी नहीं होंगे वो मुझे मेरा शोषण करेंगे, मुझे भोग करेंगे, और अपराध ही अपराध हर जगह पे होगा क्योंकि अब कृष्ण नहीं है तो धर्म की रक्षा कौन करेगा। अनुवाद, अब यह सती दुर्भाग्यवश भगवान द्वारा परित्यक्त होने के कारण अपने नेत्रों में अश्रु भरकर अपने भविष्य यानी भाग्य से के लिए शोक कर रही है, क्योंकि अब वह शासक के स्वांग बनाने वाले निम्न जाति के पुरुषों द्वारा शासित तथा भोग्य है। और इस तरह से कहने के बाद जब धर्म और गौ पृथ्वी और धर्म को जब उन्होंने सांत्वना दे दी, उन्होंने बता दिया कि आपके दुख का कारण तो ये अधर्म ही है, ये अधर्म रूपी जो कलयुग खड़ा है हमारे सामने वही आपके दुख का कारण है, इसलिए मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और कहने इतना सांत्वन देने के बाद आगे बताते हैं, इति धर्म महिम चैव शांतयित्वा महारथ निशातमाददे खड्गम कलये धर्म हेत। इति धर्म महिम चैव, धर्म माना जो धर्म यानी जो बेल है, महिम यानी जो पृथ्वी जो गौ के रूप में है, चैव उन दोनों को शांतयित्वा सांत्वना प्रदान की महारथा। महारथ कहते हैं जो एक साथ अकेले हजारों शत्रुओं को मारने वाला जो महारथी होते हैं ना, उसको बोलते हैं। और उन्होंने क्या किया, निशातमादडे तेजी से निकाली क्या खड़गम, अपनी तलवार निकाली, किस लिए, कलये धर्म हेतव, ये जो कलयुग है जो अधर्म का मूल कारण है उसको मारने के लिए अपनी तलवार निकाली। अनुवाद, इस प्रकार एक साथ हजार शत्रुओं से अकेले लड़ सकने वाले महाराज परीक्षित ने धर्म तथा पृथ्वी को सांत्वना दी, तब उन्होंने समस्त अधर्म के कारण साक्षात कली को मारने के लिए अपनी तेज तलवार ग्रहण की। और जब कलयुग ने देखा कि अब तो मेरी खैर नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, तम जिगांसुम अभिप्रेत्य विहाय निपलांचनम तत्पादमूलम शिरसा समगाद भयविह्वलम। तम जिगांसुम अभिप्रेत्य, जैसे ही कलयुग ने महाराजा का अभिप्राय समझा कि अभी ये मेरे को छोड़ेगा नहीं, उसने सबसे पहले क्या किया, विहाय निपलांचनम, ये जो निपलांचनम उसने जो राजा का वेश पहना हुआ था सबसे पहले उसको उतारा, अभी अपनी असली सूरत में आ गया। ऐसे होता है ना जब कोई राक्षस आता है अच्छा स्वरूप धारण करके, जैसे पूतना आई थी, जैसे भगवान ने उसका उसको है ना स्तन को जोर से चूसना शुरू किया, तब वो फौरन से क्या बन गई, राक्षसी बन गई। जैसे सुरपंखा आई थी वो क्या बन गई, पहले तो इतनी सुंदर स्त्री, और कहने लगी मैं विश्व सुंदरी हूँ और तुम विश्व में सबसे ज्यादा वीर हो, इसलिए तुम्हारा और मेरा मेल होना चाहिए। जैसे लक्ष्मण ने उसकी नाक काटी, अपने असली स्वरूप में आ गई। यानी ये जो राक्षस होते ना, उनके सामने जब अगर मैंने के पावर आ जाता ना, उससे ज्यादा पावर वाला कुछ आ जाता है ना, तो वो अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं। इसलिए हमेशा में हमेशा जो है ना, सबसे ज्यादा पावरफुल जो चीज है क्या है, भगवान का पवित्र नाम, उसको पकड़ के रखना चाहिए। उसके सामने कोई भी राक्षस नहीं टिक सकता। इसलिए इसने भी अधर्म ने जो राजा का स्वरूप धारण किया होता, विहाय नृपलांछनम, उसका जो नृप लांछनम जो था वो उतार दिया। और उसके बाद तद पाद मूलम शिरसा, अभी अपना सर जो है वो चरणों के तलवों में झुका दिया। समगाद भयविह्वलम, और बहुत ज्यादा भय से भयभीत हो गया था। पूर्णतया समगात, मतलब पूरी तरह शरणागत हो गया महाराज परीक्षित के, और कहने लगा अभी मेरी रक्षा कीजिए महाराज, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं भी तो आपके राज्य में रहता हूँ, तो मेरी आपको सुरक्षा करनी पड़ेगी। अब महाराजा परीक्षित ठहरे दीन वत्सल, उन्होंने जब देखा कि कलयुग अपना सब ये रूप वगैरह ये वस्त्र त्याग करके मेरी शरण में आ गया पूरी तरह से, तो फिर पतितम पादयोर वीरम कृपया दीन वत्सल शरण्यो नावधिश्लोक्य आह चेदम हसन्निव। पतितम, जो पतितों जो गिरा हो, पतित हो गया हो, पादयोर वीरम जो पैरों पर गिर गया हो, कृपया, तो क्योंकि महाराज परीक्षित करुणावान है, दीन वत्सलम दीनों पर वत्सलता करने वाले हैं, दीनों की सुरक्षा करने वाले। शरण्यो, जब उसने देखा कि ये पूरा मेरी शरण में आ गया है, नावदिच, उसको मारा नहीं, नावदिच छोड़ दिया, अभी मारूंगा नहीं, लेकिन आह चेदम हसन निव, उसे हंसी आ गई कि अभी तो इतना इनको अत्याचार कर रहा था और अभी देखो कैसे मेरे पैरों में गिर गया है, तो उसे हंसते हुए ऐसे कहा। अनुवाद, शरणागत का रक्षक तथा इतिहास में प्रशंसनीय महाराज परीक्षित ने उस दीन शरणागत तथा पतित कली को मारा नहीं, अपितु वे दयापूर्वक हंसने लगे क्योंकि वे दीन वत्सल जो थे, और हंसते हुए कलयुग से क्या कहा, राजोवाच नते गुड़ाकेश यशोधराणाम बद्धांजलिर्वै भयमस्ति किंचित् नवर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्म बंधु नति गुणाकेश यशोधराणाम। हम गुणाकेश अर्जुन के उत्तर अधिकारी हैं, इसलिए बद्धांजलि वै, क्योंकि तुम हाथ जोड़कर मेरे सामने आए हो, मेरे शरण में गिरे हुए हो, भयमस्ति किंचित, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, परंतु न वर्तितव्यम भवता कथम च, लेकिन तुम नहीं रह सकते कभी भी किसी सूरत में भी क्षेत्र मदीये, मेरे क्षेत्र में, मेरे राज्य में तुम नहीं रह सकते। क्यों? तुम अधर्म बंधु, तुम अधर्म के बंधु हो और मेरे राज्य में तुम नहीं रह सकते। अनुवाद। राजा ने इस प्रकार कहा, हम अर्जुन के यश के उत्तराधिकारी हैं और चूंकि तुम हाथ जोड़कर मेरे शरण में आए हो, अतएव तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो और तुम्हारे जैसा अधर्मी यदि किसी भी स्वरूप में हमारे देश में मैं रहने दूंगा तो क्या होगा? त्वं वर्तमानं नरदेव देहेषु अनुप्रवृत्तो यमधर्म पूग लोभोनृतं चोर्यमनार्यमहो ज्येष्ठा च माया कलहर्षदम्भ। त्वाम वर्तमानम, अगर तुम कहीं पर भी रहोगे, चाहे नर देव देहे या देवता बनकर या मनुष्य बनकर किसी की तरह भी तुम रहोगे, अनुप्रवृत्त यानी, तो फिर क्या होगा? हर जगह पर होने लगेगा यम, ये सारा अधर्म होने लगेगा। अनुप्रवृत्तो यम धर्म पूग, हर जगह पर सारे लोग ये सारे धर्म अधर्म करना शुरू हो जाएंगे। जहां पर भी तुम होगे ना, वहां पर क्या होगा? लोभो नृतम चोर्यमानार्यम हो, लोभ माना लालच, अनृतम यानी असत्य सब लोग बोलेंगे, चोरियम यानी डकैती डालेंगे, और अनार्यम मतलब शिष्टाचार कोई भी नहीं होगा। जहां पर तुम होगे वहां पर क्या होगा? अहम विश्वासघात होगा। ज्येष्ठा यानी दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य हर जगह पर होगा। चमाया और छल होगा। कलहश दम्भ, क्योंकि जहां पर तुम होगे वहां पर कलह होगा, झगड़ा होगा, घमंड होगा, दम्भ होगा, वहां पर शांति नहीं हो सकती। और मैं तुमको अपने राज्य में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि अगर मैंने तुमको अपने राज्य में रहने दिया तो हर जगह ये सब दिखेगा मुझे। अनुवाद। यदि कली रूपी अधर्म को मनुष्य देवता या किसी भी कार्यकारी के रूप में कर्म करने दिया जाता है तो लोभ असत्य डकैती अशिष्टता और विश्वासघात दुर्भाग्य कपट कलह तथा दम्भ जैसे अधर्म का निश्चित ही बोलबाला हो जाता है। और मेरे राज्य में क्या होता है? कलयुग को महाराज परीक्षित बता रहे हैं, न वर्तितव्यम तद धर्म बंधु धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ति यत्र यजन्ति यज्ञै यज्ञेश्वरं यज्ञवितान विज्ञा न वर्तितव्यम। मैं नहीं रहने दूंगा तद धर्म बंधु, तुम जैसे अधर्म के बंधु को, धर्मेण सत्येन च वर्तितव्य, यहाँ पर तो धर्म और सत्य होता है। ब्रह्मावर्ति यत्र यजन्ति यज्ञ, ये तो यज्ञ करने का स्थान है और यहाँ पर यज्ञ किए जाते हैं। क्यों? यज्ञेश्वरम, भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ वितान विज्ञा, यानी कि जो यज्ञ करने वाले बड़े बड़े पंडित हैं, बड़े बड़े ब्राह्मण हैं, वो सब यहाँ पर मिलकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, और मैं तुम्हारे जैसे अधर्मी को यहाँ पर रहने नहीं दूंगा। अनुवाद। अतएव हे अधर्म के मित्र, तुम ऐसे स्थान में रहने के योग्य नहीं हो जहाँ पर बड़े बड़े पंडित भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्य तथा धर्म के अनुसार यज्ञ करते हैं। आगे महाराज परीक्षित यज्ञ करने के कारण और यज्ञ करने से क्या लाभ होता है उसके विषय में बताते हैं। वे कहते हैं, यस्मिन् हरिर्भगवान् इच्छमान इच्छात्ममूर्ति यजतांशं तनोति कामानमोघान् स्थिरजंगमानाम् अंतर्बहिर्वायुरेव शमात्मा। यस्मिन हरेर भगवान ने माना, यानी यज्ञ जो किया जाता है, यस्मिन ऐसे यज्ञों से भगवान जो हरि हैं वो प्रसन्न होते हैं, उनकी पूजा के लिए यज्ञ किया जाता है। इज्यात मूर्तिर यजताम शम तनोपि, और उन्हीं इज्यात मूर्तिम का मतलब है जितने भी पूजा करने की जिनकी भी पूजा की जाए, चाहे देवियां हैं देवता हैं, वो सब भगवान की आत्मन होती, उनके ही अंश हैं। तो अगर हम भगवान की पूजा करते हैं तो वो सब का पूजन हो जाता है। कामान मोघान, जितनी भी जीवों की इच्छाएं हैं सारी की सारी, इस तरह जंगमाशु, चाहे सारे लोग हैं, समस्त चर और अचरों की सबके कल्याण का करने वाले केवल भगवान हैं। और अंतर भैर वायुरिव ऐश आत्मा, जिस तरह आत्मा है अंतर और बहिर वायु की तरह, वो भी मतलब हवा की तरह भगवान भी हमारे अंदर ही समाये हुए हैं, बाहर भी वही हैं। तो अगर हम भगवान को प्रसन्न करते हैं तभी हम सबको आनंद प्राप्त होता है। अनुवाद, समस्त यज्ञोत्सव में यद्यपि कभी कभी कोई देवता पूजा जाता है, लेकिन भगवान को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि वे प्रत्येक के परमात्मा हैं और वायु के समान भीतर तथा बाहर विद्यमान हैं। इस तरह केवल वे ही जो पूजा करने वाले का सारा कल्याण करते हैं। अब महाराज परीक्षित ने तो कलयुग को यह आदेश दे दिया कि तुम मेरे इस राज्य में तो नहीं रह सकते, यहाँ पर भगवान की भक्ति होती है और तुम्हारे जैसे अधर्मी में को मैं यहाँ पर नहीं रहने दूंगा, निकल जाओ मेरे राज्य से। जब इतना सुना तब सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि कलयुग की क्या कंडीशन हुई। सूत उवाच परीक्षित एवं आदिष्ट सकल जातवे पथु तमुद्यतासिमाहेदम दंड पाणि मिवोध्यतम। परीक्षते वम आदिष्ट, जब परीक्षित महाराज ने ये आदेश दिया कलयुग को, सकलेर जातवे पथु, कलयुग तो धर धर कांपने लगा, और तम उद्यता सीमा हेदम, उसकी जो उठी हुई तलवार जो थी वो उसको ऐसा लग रहा था, दंड पाणी विवोदितम, दंड पाणी यानी साक्षात उसको ऐसा लग रहा था मेरे सामने यमराज खड़ा है, अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो अभी मेरे प्राण निकाल देगा। अनुवाद, श्री सूत गोस्वामी ने कहा इस प्रकार महाराज परीक्षित से के आदेश पाकर कली भय से मारे कांपने लगा। राजा को अपने समक्ष यमराज के समान मारने के लिए उद्यत देखकर कली ने उस राजा से इस प्रकार कहा। अब कलयुग ने देखा मरता क्या ना करता, कुछ न कुछ करना पड़ेगा, बोलूं तो सही, मैं जाऊं किधर। उसके बाद कलयुग क्या कह रहे हैं, कलियुवाच, कलयुग इससे बोलता है, यत्र क्ववाथ वत्स्यामि सार्वभौम त्ववाक्यया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वमातेश्व शुशरासनम। यत्र क्ववाथ वत्स्यामि, मुझे बताओ मैं कहाँ रहूं, सार्वभौम त्ववाक्यया, आप बोलते हो मेरे राज्य से निकल जाओ, सार्वभौम जितनी भी पृथ्वी है वहां पर तो आपका राज्य है, लक्ष्य तत्र तत्रापि, इसलिए मैं देखता हूँ जिधर जिधर मैं जाके रहूंगा तब मुझे यही लगेगा तुम आकर अपनी तलवार मेरे सामने निकालोगे और बोलोगे निकल जाओ मेरे राज्य से। तो अमातेश्वर शासनम, हर जगह पर आपको धनुष और बाण लेके खड़ा हुआ देखूंगा, तो मैं किधर जाऊं बताओ। अनुवाद, हे राजा मैं आपकी आज्ञा से चाहे जहाँ कहीं भी रहूंगा और जहाँ कहीं भी देखूंगा वहीं केवल आपके ही धनुष बाण लिए, आपको ही धनुष बाण लिए देखूंगा। और आगे एक निवेदन करते हुए कलयुग ने कहा, तन्मे धर्ममृता श्रेष्ठ स्थानम निर्देष्टो मर्हसि यत्रैव नियतो वत्स्य आतिष्ठंस्तेनुशासनम तन्मे धर्ममृता श्रेष्ठ। अब ये धर्म करने वाले सब में श्रेष्ठ आप हो तो आप मुझ पर कृपा करो, स्थानम देष्टो अर्हसि, कुछ तो मुझे जगा दे दो, तत्रैव नियतो वत्स्य, जहाँ पर मैं आसानी से रह सकूं, आतिष्ठास्तेनु शासनम, आपका ही राज्य है हर जगह पर, आपके शासन में
कोई स्थान मुझे दे दो जहां पर मैं बैठ रह सकूं, कुछ तो मेरे लिए निर्देशित करो। आप मुझे इस तरह से बहिष्कृत कैसे कर सकते हो कि निकल जाओ मेरी पृथ्वी से, तो आपका जहां जहां आपका ही तो हर जगह पर क्षेत्र है, किधर जाऊं बताओ, कोई तो जगह बताओ। अनुवाद, अतएव हे धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ, कृपा करके मेरे लिए कोई स्थान निश्चित कर दें जहां पर मैं आपके शासन के संरक्षण में स्थायी रूप से रह सकूं। उसके बाद सूत गोस्वामी कहते हैं, सूत उवाच अव्यस्थित तदात्मै स्थानानि कलये ददो द्यूतं पानं स्त्रिय सूना यत्रा धर्म चतुर्विदः। सूत गोस्वामी ने कहा अभ्यर्थितस्तदा, यानी इस तरह से जब उसने निवेदन किया तस्मै, फिर स्थानानि कलये ददो, महाराज परीक्षित ने कलयुग को स्थान दे दिया। कौन सा दिया? द्यूतम पानम स्त्रिय सुना, द्यूतम यानी जहाँ पर द्यूत क्रीड़ा होती है, जुआ खेलाता है, पानम यानी जहाँ पर शराब पिया जाता है, स्त्री जहाँ पर वेश्या संग किया जाता है, सुना जहाँ पर कसाईगर होते हैं, पशुओं का वध किया जाता है। यत्रा धर्म चतुर्विधा, सूत गोस्वामी कहते हैं ये चार अधर्म हैं, ये चार अधर्म की जगह है, इसलिए कलयुग को वहां पर रहने के लिए जगह दे दी कि तुम अधर्म के बंधु तो जाओ अधर्म के स्थान में रहो। अनुवाद, सूत गोस्वामी ने कहा कलयुग द्वारा इस प्रकार से याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे ऐसे स्थानों में रहने की अनुमति दे दी जहां पर जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध होता हो। परंतु महाराज परीक्षित ने जब उसको ये चार जगहों पर रहने के लिए दिया तब तो कलयुग को और भी ज्यादा दुख होने लगा, क्योंकि वहां पर महाराज परीक्षित का शासन, वहां पर तो ये सब अधर्म होता ही नहीं, मतलब एक तरह से तो उसको बहिष्कृत कर दिया, अब रहे कहां बेचारा, क्योंकि उनके राज्य में तो ना कोई जुआ खेलता है, ना कोई शराब पीता है, ना कोई वेश्यागमन करता है और ना ही कोई मांसाहार करता है। अभी वो जाए किधर? फिर वापिस से आगे वो कहने लगा, पुनश्च याचमानाय जात रूपम मदात प्रभु ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। पुनश्च याचमाना, वापिस से भीख मांगने लगा कि महाराज मैं किधर जाऊंगा, ऐसा तो कोई स्थान है ही नहीं आपके राज्य में। फिर महाराज ने जात रूपम मदात प्रभु, जात रूपम मानी सोने के अंदर उसको रहने की अनुमति दे दी। कारण ततो नृतम मदम कामम, जहां पर सोना होता है, अनृतम मतलब वहां पर असत्य होता है, मदम मतलब वहां पर नशा किया जाता है, काम मतलब वहां पर वासना होती है, रजो मतलब वहां पर रजोगुण होता है, वैरम मतलब वहां पर शत्रुता होती है, और यही पांचवा स्थान जो है सोने का वो महाराज परीक्षित ने दे दिया कलयुग को। अनुवाद, कली ने जब कुछ और याचना की तो राजा ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति प्रदान की जहां पर सोना हो, क्योंकि जहां जहाँ सोना होता है वहीं वहीं असत्य, मद, काम, ईर्ष्या तथा वैमनस्य रहते हैं। आगे सूत गोस्वामी कहते हैं, अमूनि पंचस्थानानि यधर्म प्रभव कली उत्तरेण दत्तानि न्यवसत तन्निदेश कृत। अमूनि पंचस्थानानि, फिर ये सब पांच स्थान यधर्म प्रभव कली, यधर्म यानी निश्चय ही अधर्म के हैं, इसलिए कलयुग को दे दिए। किसने? उत्तरेण दत्तानि, उत्तरा के बेटे ने दे दिए। न्यवसत तन्निदेशकृत, न्यवसत का मतलब है रहने लगा वो वहां पर, तन मतलब उस स्थान में, निदेशकृत जैसा कि महाराजा परीक्षित ने उसे आदेश दिया। अनुवाद, इस प्रकार उत्तरा के पुत्र महाराजा परीक्षित के निर्देश से कली को उन पांच स्थानों में रहने की अनुमति मिल गई। इसलिए सूत को स्वामी वार्निंग देते हुए आगे कहते हैं, अथे तानी न सेवेत बुभुषु पुरुष क्वचित विशेषतो धर्मशीलो राजा लोक पति गुरु। अथे तानी न सेवेत, इसलिए इन सब में न सेवेत संपर्क में नहीं आना चाहिए। किसको? बुभुषु, जो अपनी भलाई चाहते हैं, पुरुष क्वचित, जो लोग अपनी भलाई चाहते हैं किसी भी दशा में, उन्हें ये कार्य नहीं करने चाहिए। विशेषतो धर्मशील, विशेष रूप से जो धर्मशील हैं, यानी जो मुक्ति चाहना चाहते हैं, जो मुक्ति के पद पर आगे जाने वाले हैं, यानी जो सन्यासी हैं, राजा यानी जो राजा हैं, लोकपति यानी जो जन नेता हैं और गुरु हैं, उनको स्पेशली इन सारी चीजों से दूर रहना चाहिए। यानी जो अपनी भलाई चाहते हैं, जो भक्ति करना चाहते हैं, जो भक्ति में उन्नति करना चाहते हैं, जो राजा हैं, जो गुरु हैं, वो इन अधर्मों से दूर रहेंगे तभी उनका कल्याण होगा। अनुवाद। अतएव जो कोई भी विशेष रूप से जो राजा, धर्मोपदेशक, जननेता, ब्राह्मण तथा सन्यासी अपनी भलाई चाहते हैं, उन्हें उपर्युक्त चार अधर्मों के संपर्क में कभी नहीं आना चाहिए। उसके बाद महाराज परीक्षित ने, क्योंकि कलयुग को दंड दे दिया था, अब वो पृथ्वी और मतलब गौ और बैल का कुछ भी है ना, उनको कष्ट नहीं पहुंचा रहा था, इसलिए सूत गोस्वामी कहते हैं, वृषिष्ठ नष्ट्रन तीन पादान तपः शौचम दयामिति प्रतिसंदद्ध आश्वासा आश्वास्य महिम च समवर्धयत। वृषस्य नष्ट्रन तीन पादान, जब बेल के तीन पैर जो नष्ट हो गए थे, तपः शौचम दयामिति, उनको वापस से जोड़ दिया महाराज परीक्षित ने, प्रतिसंदध उसको जोड़ दिया, आश्वास्य महिम, और महिम यानी पृथ्वी को आश्वासन दिया, च समवर्धयत, और इससे उसको काफी सांत्वना, उसका स्वधार हुआ, उसका जो रो रही थी अभी वो शांत हो गई। अनुवाद। तत्पश्चात राजा ने धर्म रूपी बेल के विनष्ट पैरों को जोड़ दिया और पृथ्वी को आश्वासन देकर उसकी दशा में काफी सुधार की। सूत गोस्वामी उन ऋषियों को अब बता रहे हैं महाराज परीक्षित के विषय में, स एष एतर्हि अध्यास्त आसनम पार्थिवोचितम पितामहेनोपन्यस्तम राज्यारण्यम विवीक्षताम आस्ति धुना स राजर्षि कौरवेन्द्र श्रीयोलसन गजाहवये महाभाग चक्रवर्ती बृहच्छवा। स एष एतर्य, स एष मतलब वही, एतर्य अध्यास्त मतलब इस समय भी वही शासन कर रहे हैं। आसनम पार्थिवोचितम, आसनम मतलब सिंहासन पर, पार्थिवोचितम वही राज्य करने के योग्य हैं और वही आज राज्य कर रहे हैं। कौन? पितामहेनोपन्यस्तम, जिसके पिता महाराज युधिष्ठिर ने राज्यारण्यम, जब वो जंगल में जा रहे थे, वन में जा रहे थे तपस्या करने, विवीक्षताम उनको यह राज्य जब उन्होंने दिया था, मतलब उन अपनी इच्छा से जब वो वन में चले गए थे तो राज्य उनको पिता माँ युधिष्ठिर ने दे दिया था। आस्ते धुना स राजर्षि, आस्ते धुना इस समय वह राजर्षि कौरवेंद्र जो कौरवों के राजा हैं, श्रेयोलसन यश फैल रहा है उनका, वही अभी राज्य कर रहे हैं, गजाहवे यानी हस्तनापुर में, महाभागश परम भाग्यशाली हैं, चक्रवर्ती हैं, बृहत्श्रवा अत्यंत ही विख्यात हैं। अनुवाद। वे ही परम भाग्यशाली सम्राट महाराजा परीक्षित, जिन्हें महाराजा युधिष्ठिर ने वन जाते समय हस्तिनापुर का राज्य सौंपा था, अब कुरुवंशी राजाओं के कार्यों से ख्याति प्राप्त करके अत्यंत सफलतापूर्वक संसार पर शासन कर रहे हैं। सुत गोस्वामी उन ऋषियों को बोल रहे हैं, इत्थं भूतानुभावोऽयम् अभिमन्यो सुतो नृपः यस्य पालयतः क्षोणीं यूयं सत्राय दीक्षता। इत्थं भूतानुभावोऽयम्, इत्थं इस प्रकार से, भूतानुभावोऽयम् ऐसे अनुभवी राजा हैं जिन्होंने इतने सुंदर तरीके से अपने राज्य को संपन्न किया है, इसलिए अभिमन्यु सुतो नृपः जो अभिमन्यु के पुत्र हैं, ऐसे राजा ने इतना सुंदर अपना शासन किया, उनके शासन में कलयुग के होने के बावजूद भी, कलयुग आ गया फिर भी, यस्य पालयतः क्षोणी यूयं सत्राय दीक्षितम्, आप इनके संरक्षण में होकर ऐसा सुंदर जो सत्र है, यज्ञ है, वो करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हो। अनुवाद। अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित इतने अनुभवी हैं कि उनके पटु शासन तथा संरक्षकत्व के बल पर तुम सब इस प्रकार का यज्ञ संपन्न कर रहे हो। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत कली को दंड तथा पुरस्कार शीर्षक 17वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं आप सबकी सेवा और अपनी साधना अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।